30 जुलाई 1911 को भारतीय फुटबॉल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन कलकत्ता के क्लब मोहन बागान ने IFA शील्ड के फाइनल में अंग्रेजों की टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया था। इस मैच का क्रेज इतना जबरदस्त था कि इसको देखने के लिए दर्शकों को लाने के लिए ईस्ट इंडियन रेलवे ने पास के राज्यों असम और बिहार से कलकत्ता के लिए खास ट्रेनें चलाई थीं। बेयरफुट टू बूट्स द मैनी लाइफ्स ऑफ इंडियन फुटबॉल के लेखक नोवी कपाडिया बताते हैं,
केवल 10 लाख की आबादी में इतना रुचि हो गया था कि स्पेशल ट्रेन आए के लोगों को लाने के लिए। स्टेडियम तो थे नहीं, तो लोग जो खड़े हुए, जिन्होंने हमेशा वो होशियार लोग होते जो व्यापारी होते, उन्होंने लकड़ी के डब्बे ले आए वहाँ और चार आने लेते थे, ये डब्बा हम तुम्हें देंगे, तुम उस पर खड़े होके मैच देखना। इतनी कैपेसिटी तो थी नहीं, और जो कुर्सियाँ थी वो केवल अंग्रेज़ों के लिए थी। तो भारतीय जनता जो आई है, वो शुरू में जो आ गए वो तो बैठ गए, लेकिन पीछे की जनता को तो कभी मैच दिख भी नहीं रहा था। लेकिन ये एक राजनीतिक मैच था कि एक भारतीय टीम अंग्रेज़ टीम के विरुद्ध फाइनल में खेल रहे हैं, और लोग आए और उन्हें मैच पूरी तरह दिख भी नहीं रहा था, तो पतंग उड़ाई जाती थी, और पतंग मोहन बगान के रंग में थी, मरून और ग्रीन, जो हमेशा मोहन बगान ने ये जर्सी पहना हुआ है। तो उस पतंग पे स्कोर लिखा था 0-0, 0-1, 1-1, तो जो पीछे लोग थे वो बस उसी में खुश थे, तालियां बजाते थे।
पहला गोल अंग्रेजों की तरफ से सार्जेंट जैक्सन के पैर से आया था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मोहन बागान के शिवदास भादुड़ी ने गोल उतार दिया था। इसके बाद अभिलाष घोष ने विजयी गोल मारकर वो कर दिखाया था जिसकी कम से कम उस समय तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
कभी भी कोई भारतीय टीम फाइनल नहीं पहुंचा था, तो एक वो ऐतिहासिक इंसिडेंट हो गया, तो सब कालीघाट के मंदिर पे गए थे, और उसमें रेवरेंड सुधीर चैटर्जी भी थे जो क्रिश्चियन थे, बाद में प्रीस्ट वगैरह भी बने, लेकिन वो भी साथ में टीम स्पिरिट था, तिलक लगाया। उस समय ये था कि हर कम्युनिटी के लोगों में उत्साह था, ये नहीं था कि केवल मोहन, खैर ईस्ट बंगाल तो तब शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मोमेडन स्पोर्टिंग थे, लेकिन मोमेडन स्पोर्टिंग ने भी मोहन बगान का स्वागत किया था जब मोहन बगान जीते।
मोहन बागान की पूरी टीम ये मैच नंगे पैर खेली थी, इसलिए नहीं कि बूट पहनकर खेलने में उन्हें कोई दिक्कत थी, बल्कि इसलिए कि उस समय हाथ से सिले हुए फुटबॉल बूट 7 रुपये 4 आने में आते थे, जो कि उस जमाने में एक बड़ी रकम होती थी, और मोहन बागान के खिलाड़ियों के पास इतने पैसे नहीं होते थे। एक कहानी ये भी मशहूर है कि मोहन बागान की उस टीम के स्टार खिलाड़ी सुधीर चैटर्जी को मैदान में पहुंचने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था।
एक तो सुधीर चैटर्जी थे, वो टीचर थे कॉलेज में, तो शुरुआत में अंग्रेजों के हाथों में होता था कॉलेज सारे, तो शुरुआत में उनको कॉलेज में ज़्यादा देर रखते थे कि वह मैच के लिए ना पहुँचे। अंग्रेज़ी टीम को भी पता लगा कि मोहन बगान ये दफ़ा बहुत शक्तिशाली टीम है, बहुत कठिन होगी हराने, तो ब्रिटिश टीमों को इसका भी डर था, तो सुधीर चैटर्जी को पहले लेट भेजते थे। फाइनल के दिन वो समझ गए, तो वो छुपके से पीछे के गेट से निकल गए कि लेट ना पहुँचे मैच में। और वह ये लोग कहते हैं, वो जो फिल्म भी बनी है 11, उसमें भी ये सीन है कि जब सुधीर चैटर्जी डिफेंडर थे तो क्लियरेंस करते थे, लंबे अच्छे कद के आदमी थे, तो चीयरिंग जो मोहन बगान के लिए तो सारे भारतीय लोग करते थे, अंग्रेज़ तो उस समय चुप रहते थे। एक लड़की उठ जाती थी, यंग ब्लॉन्ड, जैसे वो लगान वाली फिल्म का सीन था, तो वो सुधीर चैटर्जी के लिए हर दफ़ा वो बॉल टच करते थे, तो वो कुछ लोगों का कहना है एलिमेंट ऑफ रोमांस था।
भारतीय फुटबॉल का एक और ऐतिहासिक मैच था जब भारतीय टीम ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों के क्वार्टर फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। ये मैच भारत 4-2 से जीता था और सेंटर फॉरवर्ड नेविल डिसूजा ने हैट्रिक की थी। उस टीम के सदस्य और बाद में भारत के कोच बने पीके बैनर्जी को वो मैच अभी भी याद है।
वो मैच में नेविल जो फुटबॉल खेला वो तो देखने का लायक था, खाली वो हैट्रिक नहीं, हैट्रिक तो कभी आज तक हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी फुटबॉल में कभी ओलंपिक में हैट्रिक किया ही नहीं। नेवल ने क्या गोल किया, इतना नाजुक उसका पैर का टच था, देखने का लायक। लास्ट गोल जो किया था, गोलकीपर को काट के गोल किया, हमारा बैक पास उसको मिला ओपन, वो शूट करके गोल कर सकता था, मगर उसका इतना आत्मविश्वास कि वो उसको लेके गोलकीपर को काटा, इत्मीनान से काट कर डाल दिया जाल में।
नेविल डिसूजा को इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए उनके साथ हुई मेलबर्न में घटना ने प्रेरित किया था।
तो ये जब मेलबर्न गए तो नेविल डिसूजा साहब निकले कि थोड़ा मेलबर्न घूम लेते, तो डबल डेकर बस में बैठे, तो वो ओलंपिक का उनका वो कार्ड था, तो जो बस में लोग थे वो सब आए, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो, तो इंडिया, तो इज इट हॉकी, नो 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 फुटबॉल, तो लोग हंसने लगे, अरे फुटबॉल तो इंडिया का कभी नाम भी नहीं सुना, तो किससे पहला मैच है, दे सेड ऑस्ट्रेलिया, दे सेड ओ चलो यू नो हैव अ चॉकलेट बिकॉज यू आर गोइंग बैक, तुम तो बाहर के चले जाओगे वापस। तो डिसूजा को बहुत उस समय वो गुस्सा लगा था कि सब हमारा मजाक उड़ा रहे, कि इंडियन फुटबॉल खेलने नहीं जानते, तो बहुत जोश में थे।
सेमीफाइनल में भारत योगोस्लाविया से 1-4 से हार गया, लेकिन वहां भी पहला गोल भारत ने ही किया। भारत के खेल की हर जगह तारीफ हुई।
1956 में जब ऑस्ट्रेलिया से जीते तो सर स्टैनली राउस जो फीफा के अध्यक्ष थे, तो इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आए और शाबाशी दी। उस समय यह था कि फुटबॉल केवल यूरोप और दक्षिण अमेरिका में होता था, एशिया अफ्रीका बहुत पीछे थे, तो इसे हमें ऐसा कोच चाहिए कि एशिया और अफ्रीका में जाके सिखाए। कि इंडिया हैरानी हो गई कि 4 साल पहले हमने देखा इंडिया 10-10 गोल से हारी थी, अब तुम मेज़बान देश को इतनी आसानी से हरा रहे और इतना स्किलफुल फुटबॉल खेल रहे। देखो हम यूगोस्लाविया से भी सेमीफाइनल में नेविल डिसूजा ने गोल किया, वो हमारी वो थी फुटबॉल फेडरेशन की गलती कि उस समय हम केवल 70 मिनट के मैच खेलते थे, कलकत्ता लीग तो 50 मिनट का होता था, तो हमारे आखिरी 20 मिनट में सांस निकलने आते थे। रहीम ट्रेनिंग तो कराता था लेकिन जो सालों का जो आदत है, तो हमने आखिरी 15 मिनट में गोल खाए, और वो भी जब पीके बैनर्जी को चोट लगी है, धंगराज साहब को भी चोट लग के खेल नहीं पाए, नारायण खेले के बहुत अच्छा खेले वो भी, तो उससे हम हारे, नहीं तो हम सेमीफाइनल भी निकाल जाते।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की सबसे बड़ी जीत 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों के फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ हुई। ये मैच भारत 2-1 से जीता, और वो तब जब मैदान में बैठे सारे 1,10,000 दर्शक भारत के खिलाफ थे।
इंडोनेशिया जो नॉन अलाइन मूवमेंट का एक भाग था, तो इसराइल और ताइवान जिसे आजकल बुलाते, उन दोनों को इंडोनेशिया ने अनुमति नहीं दी थी खेलने के लिए, कहते राजनीतिक कारण के लिए हम आने नहीं देंगे। तो चलो ये उनका मामला था, सोंदी साहब थोड़े पुराने विचार के थे, वो जो एवरी ब्रंडेज और IOC के स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट मिक्स, तो उन्होंने अखबारों में ये स्टेटमेंट दे दिया। तो इंडोनेशिया के अखबार पत्रकार और जो दर्शक थे उन्हें बहुत नाराजगी हुई कि वैसे तो इंडिया हमारा दोस्त बनता है और अब हमारी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सारी इंडियन टीम के विरोध हो गए। और फुटबॉल टीम धीरे धीरे अच्छा करती रही, फाइनल पहुंची, तो इतना कठिन हो गया था कि जब टीम बस गेम्स विलेज से ग्राउंड जा रही थी तो जरनैल सिंह को बस के जमीन पर रहना पड़ा, क्योंकि वो सरदार थे तो पगड़ी पहनते थे हमेशा, तो वो दिख जाती कि इंडियन टीम है, तो वो लोग पत्थर फेंकते थे बस पे, इतना कठिन था वो।
उस टीम के एक सदस्य बालाराम बताते हैं कि वो उस मैच को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे।
वो याद हमेशा रहेगा, वो जब तक मरने तक वो रहेगा। वो उस दिन 1,10,000 लोग थे उन लोग ग्राउंड में, पूरा पब्लिक उन इंडोनेशियन पब्लिक हमारा इंडिया के अगेंस्ट में हो गया था, चिल्ला रहे थे। हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था उसका। आगे तक हम लोग इंडियन टीम बहुत फेवरेट थे, उन लोग बराबर ही बोलते थे ये बार गोल्ड मेडल जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा। वो पब्लिक फाइनल के दिन में हम लोग के अगेंस्ट में हो गया, इतना चिल्ला चिल्ली, हम लोग जो इंडियन सपोर्टर्स भी थे उसको भी उन लोग बोतल बीतल क्या क्या इससे मार रहे थे। हम लोग को समझ नहीं आया, गेम खत्म होने के बाद मालूम हुआ ये पूरा पब्लिक हम लोग के अगेंस्ट में था। हम लोग के एक ही ध्यान था, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, ये नहीं हाउस जीतना, मौका चांस है, इसका बाद में कभी मिल नहीं सकता हम लोगों के, क्योंकि हमारा टीम भी अच्छा था, हमारा कोच तो सबसे बढ़िया था मिस्टर एसए राइम, इनके वजह से हम लोग जीते हैं।
इस मैच का डिफाइनिंग मोमेंट तब आया जब कोच रहीम ने गंभीर रूप से घायल हो चुके फुल बैक जर्नैल सिंह को सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खिलाने का फैसला किया।
लीग मैच में थाईलैंड के विरुद्ध जर्नैल जो स्टॉपर खेले डिफेंडर थे उनका सिर कट गया था, 8-10 स्टिचेस लगे थे, तो वो हेड कर नहीं सकते थे। तो फिर रहीम और चुन्नी ने डिसीशन लिया कि जर्नैल वो एक जो आजकल की फुटबॉल में टारगेट मैन रहेंगे, शक्तिशाली आदमी, अच्छा वो पैर उठाते थे दूसरे के सिर तक, इतने फिट थे, तो वो कहते वो छाती से रोकेंगे, वन टच हमें देंगे, और दूसरी टीमें इनसे वो एशिया के टॉप डिफेंडर गिने जाते थे, तो एक वो माइक टाइसन वाले थे, लोग डरते थे उनसे, तो कहते वो फायदा होगा। और जर्नैल खेले थे सेंटर फॉरवर्ड अपने कॉलेज डेज में, बिल्कुल भी नई चीज नहीं थी, तो जर्नैल को ऐसे खिलाया पीके बैनर्जी, जर्नैल, चुन्नी गोस्वामी और बलराम, और यूसुफ खान विड्रॉन हो गए उस समय। तो जर्नैल ने ये साउथ वियतनाम के साथ शुरू किया सेमीफाइनल में, और फिर फाइनल में भी खिलाया, और वो एक कमाल की रणनीति थी।
मैच से एक दिन पहले कोच रहीम ने सारे खिलाड़ियों को जमा कर कहा कि उन्हें उनसे एक तोहफा चाहिए।
रहीम ने ये दो चीजें बोली, एक तो बोला ऑफसाइड नहीं खेलना क्योंकि क्राउड चिल्लाती रहेगी, तुम खड़े रहोगे, दर्शकों में किसी ने सीटी बजा दी तुम खड़े हो जाओगे, तो कहता पीछे हटके खेलना, आगे डिफेंडर ज्यादा नहीं जाना। और जो सबसे मतलब जिसे प्रोत्साहन मिला कि कहता है वो किस्मत थी कि 15 अगस्त को टीम ने यात्रा के लिए चले कलकत्ता से, ब्रॉडवे होटल में ठहरे हुए थे, और 15 साल स्वतंत्रता के बाद था, तो कहता है कि जैसे फ्रीडम फाइटरों ने और महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाया, जिस ब्रिटिश एम्पायर जो कहते थे जिसका सूरज कभी डूबता नहीं है, कहता वो कर सकते थे, तो हमने एक सिर्फ फाइनल जीतना है दक्षिण कोरिया से, तो इनसे डरो नहीं। और सब ने झंडा को छुआ उस समय, तो वो उन्हें बहुत इंस्पायर किया रहीम ने। और कई लोगों को मालूम नहीं है कि रहीम साहब को अंदाज़ा हो गया था कि वो कैंसर के मरीज थे, उन्हें पता था ये आखिरी मौका है कि एक विदेशी देश पे जाके गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने एक रात पहले भी पीके बैनर्जी बगैर को बोला था कि आप लोगों से एक तोहफा चाहिए, सोना जीत के आना। तो वो एक इंस्पिरेशन से गए हैं। और जो खिलाड़ी जिनसे बात होती वो कहते कि हम इतना अच्छा पहले हाफ में भारत खेले कि कम से कम 5 गोल आगे होने थे, खैर 2 ही किए, जर्नैल ने पहला किया और पीके बैनर्जी साहब ने विनिंग गोल किया। कहता हम इतने आक्रमण में गए कि दक्षिण कोरिया हिल गए, खैर अल्टीमेटली 2-1 से जीते।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।